सुधीजनों देवियों, हम पिछली बार से भक्ति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भक्ति क्या है? महर्षि नारद लिखते हैं कि नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ में सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा भक्ति। भक्ति उसको कहते हैं जब उसके लिए परम प्रेम हो जाए, तो उसे भक्ति कहते हैं। और हमने पिछले बार चर्चाएं की सुनी कि परम प्रेम क्या है, प्रेम और परम प्रेम में क्या फर्क है। जब व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते, जब पूरी तरह सरेंडर करते, तो तब वो परम प्रेम होता है। नेक्स्ट स्लाइड। जब प्यार में कुछ लेन देन की बात होती है, जब मेरे प्यार के साथ ये शर्त जुड़ा होता है कि तुम्हें भी मुझे प्यार करना है, मुझे कुछ आपके लिए करने के पीछे अगर शर्त ये जुड़ा है कि आपको मेरे लिए कुछ करना है, तो वो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो हम आमतौर पर समाज में जिसे प्यार कहते हैं, वो एक तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के प्रति समझौता है। पर जिसे हम प्यार कहते हैं, परम प्रेम कहते हैं, द इंटेंस लव या सुप्रीम लव कहते हैं, जब आपको देने के बदले में कुछ कोई चाहत नहीं है, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, कुछ दिल में भी कुछ सोचते नहीं है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ अपने आप को कुर्बान करके भी व्यक्ति खुश होता है। जब देश की आज़ादी में लोग बढ़ चढ़ करके अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, अपने घर बेच देते हैं, अपने जान दे देते हैं, कोड़े खाते हैं वंदे मातरम सुन सुन करके, उनको अंदर से कुछ दुख नहीं होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वे बकवास है, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। जिस कोड़े को खाकर हमें दर्द होता है, उस दर्द में भी उनको एक अजीब सी खुशी होती है, क्योंकि वो जो उसके अंदर जो एक इंटेंस ऑफ लव है, वो उनको उसी का खुशी देता है कि मैं किसी के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, किसी के लिए मैं बलिदान दे रहा हूँ, किसी के लिए त्याग कर रहा हूँ। बदले में मुझे क्या चाहिए? कि जिसके लिए मैं कुछ त्याग रहा हूँ वो खुश रहे, वो सुखी रहे, यही आशा है। इसके बदले में ये आशा नहीं कि वो भी मुझे प्यार करे, वो भी मुझे कुछ दे। इसी का नाम परम प्रेम है। जब वो अनकंडीशनल होता है, कोई बीच में कंडीशन ना हो, जब वहाँ कोई रिजर्वेशन ना हो, तब वो प्रेम होता है। जहाँ कोई सेल्फिश एक्सपेक्टेशन नहीं होता, और वो प्रेम जहाँ कोई डर भी नहीं होता। इसीलिए प्रेम हम नहीं करते कि हम उससे डरते हैं, प्रेम नहीं करेंगे तो पता नहीं वो क्या बिगाड़ डालेगा। जब भी ईश्वर के साथ आपका संबंध डर के कारण है, अगर हम ईश्वर से डर के कारण पूजा करते हैं कि हमारा कुछ नुकसान ना हो जाए, अगर हम ईश्वर से इसीलिए भक्ति करते हैं कि हमें कुछ नुकसान हो जाएगा, कि हमें ईश्वर नाराज हो जाएगा, हमारा काम बिगाड़ देगा, तो उसे भक्ति नहीं कहते। वो डरपोक का जो कुछ, डरपोक किसी को मार भी सकता है, किसी के पैर में भी गिर सकता है, वो स्वार्थ जब चरम पर होता है, जब सेल्फिशनेस अपनी सुप्रीम लेवल पर होता है, तब हम डरे हुए होते हैं। आमतौर पर समाज में डर को प्यार का नाम दे दिया जाता है। जब बहुत सारे लोग ईश्वर से इसीलिए जुड़ते हैं कि उनको डर है, ना जुड़े तो कुछ नुकसान ना हो जाए, इसीलिए जुड़ते हैं। तो अगर डर ही है तो वो फिर प्रेम नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो स्वार्थ है। भक्ति या प्रेम तब होता है जब आपको कोई डर नहीं है, आपको ना करने से आपको कुछ नुकसान होगा ऐसा आप नहीं सोचते, आप करते हैं क्योंकि आप उसे प्यार करते हैं, आप उसको उसका भला चाहते हैं, उसको सुखी देखना चाहते हैं, उसको खुश देखना चाहते हैं, वो आप अपने तरफ से अपनी कोशिश करते हैं, बदले में आप कुछ नहीं चाहते, उसी को भक्ति या परम प्रेम कहते हैं। अगली स्लाइड पर चलेंगे। बहुत सारे लोगों की जो धारणा है कि जब हम ईश्वर से भक्ति करते हैं, प्रार्थना या पूजा करते हैं, तो ईश्वर हमारे ऊपर खुश होकर के उसका जो यूनिवर्सल रूल है उसके साथ वो कंप्रोमाइज करता है और हमें फायदा पहुंचाता है। जैसे किसी लीडर को, किसी ऑफिसर को, किसी म्युनिसिपैलिटी के कॉर्पोरेशन के ऑफिसर को, किसी पुलिस अफसर को हम रिश्वत देते हैं, ब्राइब करते हैं कि वो रूल के साथ ढीला करे और मुझे उसकी छुटकारा मिल जाए उस रूल के साथ, और हम इसी इसी सोच के साथ ईश्वर से भक्ति करते हैं कि इसके बदले में वो जो हमारे अंदर जो बुराइयां है वह हमारे साथ जो गलत घट रहा है वो ईश्वर कंप्रोमाइज करके रूल के साथ वो हमारे लिए विशेष कृपा करते हैं। और बहुत सारे धर्मगुरु आचार्य ऐसा समझाते हैं लोगों को, अगर आप ऐसा करोगे, आप अगर हमारे भगवान को मानोगे, अगर आप हमें गुरु मानोगे, अगर आप भगवान को अमुक प्रसाद चढ़ाओगे, अमुक ग्रह में अमुक चढ़ाओगे, तो आपको ये चीजें आपके दुख दूर हो जाएंगे। मतलब भगवान कंप्रोमाइज करने को बैठा है। और ये जो सोच है ये इंसानी सोच है। और कैसे इंसानी का सोच, इंसान जैसा होता है उसको दुनिया के लोग वैसे दिखते हैं। आप किसी खून खराबा करने वाले आदमी से पूछिए, वो खून खराबा का महत्व आपको समझाएगा कितनी अच्छी चीज है, और ये भी साबित कर देगा कि इस दुनिया में हर आदमी खून खराबा करना चाहता है पर वो डरपोक नहीं करते और जो बहादुर है वही कर सकता है। अब हर चोर को पूछिए, वो चोरी का गुण बखानेगा और ये भी जरूर बताएगा कि हर आदमी चोरी करता है, बस मुझे या हम लोगों को बदनाम करते हैं। तो जैसी हमारी मानसिकता होती है हम बाकी जगह ऐसा देखते हैं। और हमने ईश्वर को भी अपने ढंग से बनाया है। जिस ईश्वर की पूजा हम करते हैं वो ईश्वर हमारे अपने द्वारा बनाया गया ईश्वर है जो बिक सकता है जैसे हम बिक जाते हैं। हमें कोई मीठा बोले तो हम अपने कंप्रोमाइज कर देते हैं, हमें कोई ब्राइब करे तो हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि ईश्वर भी इसी तरह का होगा, वो मेरे ही जैसा होगा। जो ज्यादा ईमानदार नहीं है, बेईमानी भी करता है, थोड़ी बहुत ईमानदारी है हमारे तरह रखता है, जो थोड़ी बहुत मीठा बोलने पर, तारीफ करने पर, झूठी सच्ची खूब तारीफ करने पर या कुछ प्रसाद ब्राइब करने पर वो खुश हो जाएगा और हमारा काम बना देगा। और इसको प्रूव करने के लिए हम एविडेंस क्या देते, हजारों तरह के एविडेंस रखते हैं। देखो अमुक व्यक्ति अमुक परेशानी में फंसा, अमुक मंदिर में अमुक देवता के वहां वो मन्नतें रखी, अमुक पारायण किया, अमुक प्रार्थना की, उसका ठीक हो गया। इसको संस्कृत में काकतालीय न्याय कहते हैं, अंग्रेजी में आप को इंसिडेंस कहते हैं। अगर उसी से समाधान होता तो लाखों करोड़ों लोग जो उसी तरह के मंदिर में जाते, उसी तरह के पूजा करते, सबको फल मिलना चाहिए। सिर्फ 10-20-50 को क्यों मिलता है, बाकियों को क्यों नहीं मिलता? जिनको ठीक होना होता है वो ठीक होते हैं, जिनको नहीं होना होता है नहीं होते हैं। जो ठीक होते हैं और उसी भावना के साथ पूजा करते हैं कि मुझे ठीक कर दो भगवान, और वो ठीक हो गए, उनको लगता है कि भगवान ने ठीक कर दिया। वो तो वैसे ही जैसे वो काकतालीय न्याय में कहते हैं, एक ताड़ के पेड़ में, ताड़ जैसे पाम ट्री होता है, उसमें एक ताड़ का पेड़ फल जो है वो पका हुआ था और बहुत सारे फल पके हुए थे, और एक कौवा उसमें बैठ गया। कौवा के बैठते ही एक पका हुआ ताड़ जो है वो नीचे गिर गया, और जो सामने बैठे हुए लोग थे उन्होंने कहा, देखो कौवा कितना मजबूत है, कौवा कितना हैवी है कि कौवा के बैठते ही ताड़ गिर गया। कौवा के बैठने के साथ ताड़ के गिरने का कोई रिलेशन नहीं है, सिवाय इतना कि दोनों इंसिडेंट्स एक ही टाइम पर हुए, इसी को हम को इंसिडेंट्स कहते हैं। अगर आपके पूजा करने से आपके घर में धन बरसता तो जो नास्तिकों के घर में धन बरसता है वो कहां से आया, जो ईश्वर को मानते ही नहीं है। अगर सिर्फ भक्ति करने से आपकी बीमारी ठीक होती तो दुनिया में डॉक्टर क्यों होते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मतलब बेचारा डॉक्टर ठीक करे, आप क्रेडिट और किसी को दो। इसको हम कोइंसिडेंस कहते हैं। दूसरी चीज है, ईश्वर कभी भी किसी इंसान की तरह प्रशंसाओं को, स्तुति प्रार्थना प्रशंसाओं को सुन करके, उसकी ग्लोरिफिकेशन को सुन करके, उसको प्रसाद चढ़ाने को पा करके वो डिवोटी के प्रति कुछ खास चीजें कभी नहीं करता। ईश्वर का रूल हमेशा अनचेंजेबल, ना बदलने वाला, इटर्नल होता है। तो फिर आप कहेंगे, अगर ऐसी बात है ईश्वर कुछ करने वाला है नहीं हमारी भक्ति से, तो फिर आप क्यों लेक्चर झाड़ते हो भक्ति के ऊपर? भक्ति, महर्षि दयानंद कहते हैं, भक्ति का अपना फल होता है। भक्ति अपने आप में इतना पावरफुल है कि आपके जीवन को बदल सकती है, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। वैसे गीता में इसी बहाने मुझे याद आया, सातवें अध्याय में भगवान कृष्ण चार तरह के भक्तों की बात करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सकृतिरोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कुछ लोग इसीलिए ईश्वर की भक्ति करते हैं जब वो आर्त होते हैं, जब वो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, जिंदगी भर तो मस्ती की उन्होंने बिल्कुल नकारा, माँ बाप को नकारा, ये सब ऐसे ही पुराने पंथी लोग हैं, पता नहीं भगवान भगवान करते रहते हैं। पर जब खुद पर मुसीबत आने लगा और वो मुसीबत ठीक नहीं होने लगा, तब उनको भगवान आने लगे और वो भगवान को उस समय टेस्ट भी करते कि चलो अब भी मौका है कि टेस्ट कर ले कि सचमुच है कि नहीं, अब मैं मुसीबत में फंसा, चलो अब मैं भगवान को बुलाता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। ये आर्त कैटेगरी के लोग होते हैं जो दुखी होने पर ईश्वर को बुलाते हैं, दुखी होने पर ईश्वर की भक्ति करना शुरू करते हैं। दूसरे टाइप के भक्त हैं जिज्ञासु, जिनको बड़ी जानने की इच्छा है, क्यूरियोसिटी है। अब सब बोलते हैं मंदिर में जाएं, चर्च में जाएं, मस्जिद में जाएं, कहीं भी जाएं, भगवान की बात होती है, घर में जो माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, वो भी भगवान की बात करते हैं, तो उनको बड़ा क्यूरियोसिटी होती है, तो वो भगवान को जानने के लिए फिर मंदिरों में जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, जानते हैं, और उसको भी कभी कभी हम भक्त का नाम दे देते हैं। दूसरे तरह की कैटेगरी के भक्त होते हैं जो अर्थार्थी हैं, जो भगवान के साथ इसीलिए भक्ति करते हैं, उनको कुछ चाहिए, धन संपत्ति, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी होनी चाहिए, बस जो गंदा बस है वो जल्दी कैसे सस्पेंड हो जाए, भाग जाए, नौकरी छोड़ दे, कोई अच्छा सा बस आ जाए, कंपनी ठीक ठाक चल पड़े, बिजनेस में ठीक ठाक हो जाए, इसीलिए वो भक्ति करते हैं, अर्थार्थी है। और चौथा किस्म का है ज्ञानी, जो समझता है ईश्वर क्या है, खुद क्या है, समझता है, समझने के बाद उस परम प्रेम से, क्योंकि जब आप किसी को समझते हैं उसके रियलिटी को, तब आप प्यार कर सकते हैं। अब अंधाधुंध प्यार करें तो वो परम प्रेम नहीं हो सकता। जब आप उसकी एट्रीब्यूट्स को, उसके गुण को समझते हैं, उसकी क्वालिटी को समझते हैं, उसके जो एक्टिविटीज है उसको समझते हैं, आप अपने आप को भी पहचानते हैं आप क्या हैं, तब जब आप प्रेम करने लगते हैं जिसमें कुछ पाने की इच्छा नहीं, जो खोने की कोई चाहत कुछ नहीं है, ना पाना ना खोना, बस आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वो ऐसा जो भक्त है वो ज्ञानी भक्त है। तो उनमें से जो ज्यादातर जो आम भक्त होते हैं, जो कुछ पाने की लालसा से भक्ति करते हैं, तो ईश्वर कभी भक्ति करने से एक्स्ट्रा कुछ नहीं देता है। ईश्वर अगर दयालु है तो वो 24 घंटे दयालु है, एक घंटा दयालु और 23 घंटे लूटने वाला नहीं है। अगर वो दया करता है तो सब पर दया करता है, वो संसार के हर प्राणी पर दया करता है, वो एक्सेप्शनल किसी पर काइंडनेस नहीं दिखाता, वो किसी पर एक खास तरह की दया नहीं दिखाता, क्योंकि एक ही साथ चोर भी मंदिर जाता है, चोर भी घर में बैठ के पूजा करता है, और पुलिस भी पूजा करती है, और दोनों की अभिलाषा है, भक्ति है कि हे ईश्वर आज रात ठीक ठाक गुजार दो, 3 साल से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है, एक भी यार चोर पकड़ में नहीं आता है, एक चोर पकड़वा दो मेरा कल प्रमोशन में नाम आ जाए मेरी लिस्ट में। अब पुलिस रोज प्रार्थना करती है, अब चोर भी यही प्रार्थना करती है कि कभी मेरे सामने कोई पुलिस आए ही नहीं, पुलिस आए तो मैं पकड़ में आऊं नहीं। तो ईश्वर किसका सुने, तो जिसकी ज्यादा भोग चढ़े या ज्यादा ज्यादा तेल ज्यादा मक्खन वाली भक्ति हो, तो जिसका सुने भक्त ईश्वर उसका कभी चोर का सुन देता है, किसी का पुलिस की सुन जाती है, मतलब कभी चोर जीत जाता है, कभी पुलिस जीत जाती है। तो क्या ईश्वर कभी कभी चोर के रिश्वत खाकर भी खुश हो जाता है, कभी पुलिस की रिश्वत खाकर खुश हो जाता है? प्रार्थना तो सभी करते हैं और फायदे के लिए सभी करते हैं, तो अगर ईश्वर प्रार्थना का फल देने लगता, भक्ति का फल देने लगे, तो फिर तो दुनिया में जितने आप बुरे लोग हैं वो सब ईश्वर भक्ति करेंगे और उनको सब माफ हो जाएगा। स्वामी जी कहते नहीं, ईश्वर तो सच्चिदानंद है, वो परम है, वो सब सर्वज्ञ है, सब जानता है, सब व्यापक है, सब पर दया करता है, सब पर न्याय करता है। अगर भक्ति से ईश्वर फल नहीं देता तो फिर फल कहाँ से आता है, फिर भक्ति करने का क्या लाभ है। तो भक्ति के अपार लाभ है, इसकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। उससे पहले अगली स्लाइड एक चीज हम और समझ ले, फिर हम चलेंगे भक्ति का क्या लाभ है। जो भक्ति है पिछली बार हमने चर्चा की, जो हम भक्ति करते हैं उसको करने के जितने तरह के उपाय से हम भक्ति करते हैं, कोई पूजा करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई हवन करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई नाम जपता है, जो भी आपके तरीके हैं, उन सभी तरीकों को तीन तरीके से बांटा गया। एक है स्तुति, ग्लोरिफिकेशन या अप्रिसिएशन, दूसरा है प्रार्थना, प्रेयर या प्रेशियसली बेगिंग, कुछ मांगना, और उपासना, अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ा। ये तीन भक्ति के पिलर होते हैं, भक्ति के खंभे होते हैं, जिन पर हमारे भक्ति के रिलेटेड जितने एक्टिविटीज हैं, ईश्वर के संबंधित जितने भी पूजा पाठ की जितने जितने तरह के अलग अलग चीजें हैं, उन वो तीनों तरह में बांटे जाते हैं। उनमें स्तुति क्या है, इसकी थोड़ी बहुत चर्चा हमने पिछले बार की थी, अगली स्लाइड में। स्तुति मतलब अप्रिसिएशन, सीधी भाषा में कहें प्रशंसा करना, तारीफ करना। तारीफ का मतलब झूठी तारीफ नहीं है, जो जैसा है उसको उसी रूप में बताना। अगर सूरज रोशनी देता है तो ये बताना उसकी प्रशंसा है कि सूरज रोशनी देता है। अगर आप नहीं बताते या ये मानने को तैयार नहीं कि सूरज अंधेरा दूर करता है, तो हम उसकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। या ग्लोरिफिकेशन, उसके जो गुण है उसकी उसको बताना या बखान करना। ईश्वर की स्तुति का अर्थ होता है कि ईश्वर का गुणगान करें। गुणगान करें क्यों करें, कि संसार में आप जिसके भी गुणगान करते हैं, जिसकी भी तारीफ करते हैं, उस आदमी को, सामने वाले को कम फर्क पड़ता है, जितना गुणगान गुण गाने वाले को ज्यादा उसका फर्क पड़ता है। आप किसी नेशनल लीडर है, कोई इंटरनेशनल लीडर है, कोई बहुत बड़े धर्माचार्य हैं, बहुत बड़े साधु सन्यासी हैं, संत हैं, कोई सामाजिक नेता है, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कोई फिल्म स्टार है, आप जिस जिस के भी फैन है, जिस जिस के भी प्रशंसक है, जो आपको बड़ा अच्छा लगता है, जिसके नाम आप 24 घंटे गाते रहते हैं, जब जितने ज़्यादा आपके मन में हमेशा क्या भाव रहता है, उसकी तारीफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मुँह से मुझे सुनने को मिले, और जहां जो मौका मिले मैं उसकी तारीफ करूं। जो ओबामा के प्रशंसक हैं हमारे देश में, जो बड़े कट्टर प्रशंसक हैं, वोट देने वाला नहीं, जो उनके फैन है, जो उनके लिए दीवाने हैं, आप उनसे पूछिए, वो आपसे ये एक्सपेक्ट जरूर करेंगे कि आप अपनी बातचीत में ओबामा के दो चार तारीफ जरूर करें। वो खुद भी आपको सुनाएंगे कि उसके अच्छी बात, दो चार अच्छी बातें क्या है, उनको बुराई सुनना पसंद नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सिम्टम है कि ओबामा के कुछ दीवाने हैं, ओबामा के कुछ ज्यादा प्रेम करने वाले। तो कुछ लोग थोड़ा ज्यादा दीवाने होते हैं, वो ओबामा के जैसे ही बाल रखने लगते हैं, कपड़े पहनने लगते हैं, बोलने लगते हैं। आप देखेंगे हर पॉलिटिकल पार्टी में जो उनके आइडियल लीडर होता है, लोग उसी तरह के कपड़े पहनने लग जाते हैं, उसी की तरह टोपी पहनने लग जाते हैं, उसी की तरह बाल रखने लग जाते हैं। जो हमारे आपके बच्चे या आप जब खुद टीन एज में रहे होंगे, जो आपके फिल्म स्टार जिसको आप पसंद करते थे, फैन होते थे, आप उसी के हिसाब से अपने बाल स्टाइल करते थे, उसी के स्टाइल में कपड़े पहनते थे, हो सकता है उम्र बढ़ गया तो क्या है, अभी भी करते होंगे कुछ लोग। तो प्रेम का तो कोई उम्र नहीं होता है ना, आप कभी भी किसी से प्यार कर सकते हैं और उसी की तरह रहने की कोशिश करते होंगे। बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जिनके लिए बड़े दीवाने होते हैं, तो जब आप प्रशंसा करते हैं उस व्यक्ति को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना हमारा अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो मानसिकता है, उसमें बदलाव आता है। वो क्या बदलाव होता है, पहला बदलाव है कि आपका प्रेम उसके प्रति और बढ़ता है, जितने तारीफ आप सुनते जाएंगे, जितने तारीफ करते जाएंगे, आप उतने ज्यादा दीवाने होते जाएंगे। ये एक रियल फैक्ट है। पिछले बार भी हमने चर्चाएं की थी, अगर आपके तारीफ करना कम हो रहा है तो आप खुद एनालिसिस करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका किसी के प्रति प्यार कम होता जा रहा है, खास करके आपके रिलेशनशिप में, आपके पति पत्नी हो, माँ बाप बच्चे हो, कुछ भी हो, तो ये खुद को देखने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि तारीफ करना व प्रशंसा करने का मतलब नहीं कि आप मुंह में 24 घंटे बोलता रहे और सामने वाला सुनता रहे, आपके दिल की बात है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा 24 घंटे सामने बैठा के तारीफ करते रहो, तुम बड़ी अच्छी हो, तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़ा अच्छा खाना बनाते हो, ये कोई सुनना नहीं चाहता है, करना नहीं चाहता है। ये जो फीलिंग है, हम खुद उसको फील कर पाते हैं कि नहीं, क्या सचमुच हमारे अंदर उसके बारे में अब बुराइयां ज्यादा मरने लगी है, वा अभी भी उसके प्रति हम तारीफों के पुल बांधते हैं, उसके जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम समझते हैं, मानते हैं। जब आप उसके कर्मों को, उसके गुणों को एक्सेप्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, तो ये सिम्टम है कि आपका प्रेम है, और जितना ज्यादा आप करते हैं उतना आपका प्रेम उसके प्रति बढ़ता है। अगली स्लाइड में चलेंगे। तो स्तुति का पहला फल है, जब आप ईश्वर की स्तुति करेंगे, ईश्वर का गुणगान करते हैं, तो आपकी ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है, प्रीति बढ़ने लगती है, अटैचमेंट बढ़ने लगता है। जिस चीज के प्रति आपका प्यार ज्यादा हो उसी से अटैचमेंट तो ज्यादा होगा ना। अगर पैसे के प्रति आपका अटैचमेंट ज्यादा है तो आप उसी के प्रति झुकेंगे, अगर रिलेशनशिप को आप ज्यादा मायने देते हैं तो आप उसी की ओर झुकेंगे। आप जिस और जिसकी जिसको आप अच्छा समझते हैं, जो आपके दिल में घर बसा देता है, आप उससे ज्यादा अटैच होते हैं। इसी तरह ईश्वर के प्रति जब हम तारीफें करने लगते हैं, तो प्रशंसा करने लगते हैं, उनके गुणगान करने लगते हैं, तो हमारी प्रीति बढ़ने लगती है। ईश्वर का गुणगान का क्या मतलब है कि जिस ईश्वर ने इतने बड़े संसार को बनाया, हमें बुद्धि दिया, हमारे इतने बड़े सुंदर शरीर दिया, तो दिन और रात बनाया, इतने तरह के मौसम बनाया, क्या वो तारीफ के काबिल नहीं है? हमारे छोटे छोटे कोई भला कर देता है, हम इतने तारीफ करते हैं, तारीफ के काबिल नहीं। इसका अर्थ नहीं है कि ईश्वर हमारी और आपकी तारीफ या स्तुति या प्रार्थना सुन के खुश हो जाता है, बोले बेटे अच्छा है, तेरा भी ख्याल रखूंगा, ऐसा नहीं कुछ करने वाला। वो स्तुति करने से हम खुद उसके दीवाने होने लगते, हमारा अटैचमेंट उससे होने लगता है। ईश्वर का यहाँ कोई रोल नहीं होता है, ये भक्ति अपने आप एक स्टेट ऑफ माइंड है, और वो हमारे स्टेट ऑफ माइंड को ही चेंज करता है, रिफॉर्म करता है। दूसरी चीज है जो स्तुति का फल है कि उसके गुण धारण करने की इच्छा होने लगती है। जिसकी भी आप प्रशंसक हैं, जैसे अभी जैसे मैंने कहा, आप किसी फिल्म स्टार के हैं या किसी प्लेयर के खिलाड़ी के हैं या किसी पॉलिटिकल लीडर के हैं या किसी आध्यात्मिक गुरु के हैं, किसी साधु के, सन्यासी के, जिसके भी आप फॉलोअर हैं, बस जिसको भी आप अच्छा मानते हैं, फिर लोग उसी की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब उसी की तरह हमारे कपड़े, हमारे ये, हमारे उसके तरह गुण होने लगते हैं। आप स्वामी विवेकानंद को फॉलो करते हैं या महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं या आप अब्राहम लिंकन को फॉलो करते हैं या आप लेनिन को फॉलो करते हैं, जिसको भी आप देखेंगे। भारत में एक मजेदार बात बताते हैं, बंगाल में, भारत में ज्यादातर कम्युनिस्ट का जो गढ़ है वो बंगाल है, और जो कम्युनिस्ट हो जाता है किसी तरह पढ़ के, अध पढ़ के, सुन सुन के, जैसे ही पहला काम उसका क्या होता है, अब वो चप्पल पहनेगा जूते की जगह पुराना चप्पल, अब वो बीड़ी पिएगा, अब वो कपड़े धोती पे जो कुर्ता पहनेगा और ऊपर पैंट पहनेगा नीचे, और एक झोला डालेगा, सारे मिला के 300-400 रुपए के होंगे। क्यों? कम्युनिस्ट लोग ऐसा ही दिखाना पसंद करते हैं। हो सकता है उसका घर जो है अरबों का हो, उसका बेटा बेटी अमेरिका में पढ़ते हो, जो कम्युनिस्ट रोज अमेरिका को गाली देते हैं, और ज्यादातर कम्युनिस्टों के बच्चे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में पढ़ते हैं, और वो रोज अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया को गालियां देते हैं। पर ऐसे कपड़े पहनेंगे क्योंकि उनके नेता ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, बीड़ी तक पिएंगे, ये भी उसका फैम है। ये जैसे आप जानते हैं भारत में एक बड़ा साउथ में सुपरस्टार है, तमिल सुपरस्टार रजनीकांत, नाम सुना होगा बहुत लोग, हो सकता है इनमें फैम भी बैठे हो इनमें से। उसके अपने सब पीने का चलने का स्टाइल है, और उसके इतने सारे दीवाने हैं, खास करके तमिल दीवाने, तमिल लोग इतने बहुत सारे दीवाने हैं उनके। वो अब 70-75 साल का वो बुढ़ा हो गया है, वो अभी भी वो हीरो बनता है और लोग दीवाने होते हैं, और लोग उसी की तरह बाल रखते हैं। वो चंदा, वो उसके बाल उड़ गए हैं तो उसके भक्त भी बाल उड़वा देते हैं अपने। ये क्या है कि आप जिसकी प्रशंसा करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जिसका जो आपके लिए आइडियल बनता है, आप भी उसी तरह बनने की कोशिश करने की कोशिश करते हैं। जब एक बच्चा किसी क्रिकेट खिलाड़ी का या फुटबॉल खिलाड़ी का या किसी फिल्म स्टार का फैन बनता है, वो उसकी तरह नकल सिर्फ नहीं करता, उसके दिल में क्यों नकल करता है, क्योंकि उसके दिल में ये भाव बैठा होता है, काश मैं भी उसी की तरह होता, वा मैं उसकी तरह बन जाऊं। वो कोशिश करता है, वो नहीं हो पाता है, वो इतना बड़ा नहीं हो पाता है, पर कोशिश उसी तरह का करता है। यही है स्तुति का दूसरा फल, कि जैसे ही आप किसी के प्रशंसक बनते हैं, किसी की भक्ति करने लगते हैं, आपके अंदर भी उसी तरह के गुण और आने की आप इच्छा रखते हैं। अगर आपकी भक्ति में सच्चाई हो, आपकी स्तुति में प्रशंसा में सच्चाई हो, तो आप भी उसी तरह के बिहेव करने लगते हैं, आप भी उसी तरह के गुण अपने अंदर लाने लगते हैं। जब ईश्वर के प्रति सचमुच हमारी भक्ति होने लगे, तो भी हम ईश्वर की तरह कुछ गुण अंदर लाने लगते हैं। ईश्वर जैसे सबके लिए बराबर है, ईश्वर जैसे दयालु है, वो न्यायालु है, इसी तरह के गुण भी हम अपने अंदर लाने की कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए ये बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, जब आप स्तुति करते हैं तो आप उसके कौन से गुणों की स्तुति करते हैं, ये ध्यान देना बड़ा जरूरी है। इसका एक छोटा सा झलक आपको दूं, बहुत बार यहाँ हमने बोला भी है, जैसे हम लोग कृष्ण की स्तुति करते हैं, इस पर बहुत बार हमने चर्चाएं की है। अब कृष्ण की स्तुति हम किस रूप में करते, ज्यादातर लोग कृष्ण की स्तुति ये नहीं करते कि वो योगेश्वर था, वो गीता का उपदेश देने वाला था, वो द्वापर युग के महाभारत के समय के ज्यादातर दुष्टों को नष्ट करने वाला था, सबसे बड़ा योद्धा था, सबसे बड़ा वीर था, सबसे बड़ा न्यायालु था, न्याय करने वाला था, ऐसा नहीं करते हम। उसके किस तरह के गुणगान करते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है, वो भी प्रैक्टिकली आप देख लीजिएगा। हम उसके गुणगान करते हैं, वो गोपियों के साथ कैसे छेड़खानी करता था, राधा के साथ घूमता था, उसका रिजल्ट आप देखेंगे आपके बाबाओं में, कैसे वो लीला के नाम ले लेकर, कृष्ण का नाम ले लेकर लीलाएं करते हैं और उनके चेले भी लीलाएं करते हैं। सज्जनों माताओं, ध्यान रखिए, आप जिस चीज की प्रशंसा करते हैं, आपके अनजाने में वही आपके अंदर आता है, ये सावधान होइए। जब भी आप बड़े आदमी की तारीफ करें, उसके कौन से गुणों की तारीफ करते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा सोसाइटी उसी तरह का बन जाए। स्तुति का तीसरा फल है, स्वामी जी लिखते हैं, कृतज्ञता का भाव पैदा होना बड़ा जरूरी है, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब मेरे ऊपर मेरे लिए कोई एहसान करता है, जब मैं मुसीबत में था, मुझे किसी ने 10 रुपए हेल्प किया था, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको धन्यवाद दूं, इस चीज को स्वीकारूं कि उसने मुझे मुसीबत में 10 रुपए दिया था। हो सकता है आज के तारीख में मुझे 10 रुपए का, $10 का कोई कीमत नहीं है, पर जब मुझे जरूरत थी उस व्यक्ति ने 10 रुपए दिया था, और ये खोल के बोलना, एक्सेप्ट करना, उसको इतना फायदा नहीं करेगा जितना हमें करेगा। ये बड़ी अच्छी बात है, जब आप ग्रेटफुल होते हैं, जब आप अपने एहसान जताते हैं, दूसरे के एहसान को आप मानते हैं कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ एहसान किया है। और ध्यान रखिए, जो आदमी एहसानों को नहीं मानता, हम उसके अच्छा नहीं मानते, हम बड़ा बुरा मानते हैं, बड़ा गंदा मानते हैं, बड़ा स्वार्थी मानते हैं ऐसे व्यक्ति को। और जो मानता है उसको बड़ा हम उदार मानते हैं, अच्छा मानते हैं। और आपको पता है इसका फायदा किसको होता है? जो एहसान को मानता है, जो अपने वो ग्रेटिट्यूड दिखाता है, उस व्यक्ति को खुद को होता है जो एहसान मानता है। क्यों? उसका मन निर्मल होता है, वो ज्यादा प्योर होता है, वो सरल, ज्यादा सिंपल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो जितना सिंपल होता है, जितना प्योर होता है, उसको खुशी के लिए कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, वो उसको अपने आप अंदर उसकी खुशी आने लगती है। ये जो ग्रैटिट्यूड में से, ये जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है, ये बहुत बड़ी चीज है हमें अपने दिल को निर्मल बनाने के लिए। अगर हम छोटी छोटी चीजों में भी थैंक यू बोलना जानते हैं, अपने माँ बाप को, अपने पड़ोसी को, अपने डॉक्टर को, अपने सेल्समैन को, हर चीज को हम थैंक यू बोलना जानते हैं दिल से, नौटंकी की बात नहीं करते। आजकल तो बहुत सारा मुंह में आ गया, दिल में कम हो जाता है। आप दिल से करते हैं तो क्या वो ईश्वर धन्यवाद के पात्र? रोज हमें उसके धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, कहना नहीं है। क्या ये फील करने की जरूरत नहीं कि ईश्वर ने मेरे लिए क्या किया? जिस दिन आप काउंट करने लगेंगे ईश्वर ने मेरे लिए क्या किया, आपकी डायरी भर जाएगी पर आपकी लिखना खत्म नहीं होगा। ईश्वर ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी कुछ अच्छी बुद्धि दी, इतने हाथ पैर आपके सलामत रखा, आपके लिए हवा पानी सब कुछ फ्री दिया, आग धरती सब कुछ फ्री में दिया, इतने सुंदर सुंदर अनाज पैदा किए, इतने सुंदर सुंदर वेजिटेबल्स है, दुनिया भर के चीजें आपके लिए। इनमें से एक भी चीज नहीं होता हमारा जीना मुश्किल हो जाए। हमें बचपन में पालने के लिए माँ बाप दिया, अगर कुछ ईश्वर का ऐसा सिस्टम होता कि पैदा करने के बाद माँ बाप और कहीं चले जाते जैसे बहुत सारे जानवरों में होता है, तो हमारी जिंदगी कैसे होती? ये जो ईश्वर की व्यवस्था है, क्या ये हमें रोज इसको फील करने की जरूरत नहीं है? तो स्तुति, ये जो अप्रिसिएशन है, इससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, हमारा दिल प्रसन्न होता है, हमारा मन प्रसन्न होता है। और इस तरह ईश्वर की स्तुति से ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है, और जब प्रेम बढ़ता है तो हम उसके गुणों को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और जिससे हमारा मन ज़्यादा निर्मल और पवित्र होता है। स्तुति के बाद अगली स्लाइड लाएंगे। स्तुति के बाद जो अगली है, जो अब अगला जो पिलर है, अगला जो खंबा है भक्ति का, वह प्रार्थना। प्रार्थना का सिंपल मीनिंग है कि ईश्वर से कुछ मांगना। वैसे तो प्रार्थना शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रार्थना में दो शब्द हैं, प्र जमा अर्थना, अर्थना मतलब मांगना, प्र मतलब अच्छी तरह। अच्छी तरह मांगने का मतलब गिड़गिड़ा करके मांगना। ये गिड़गिड़ाना शब्द ध्यान दीजिएगा, आप किसी से मांगते हैं, 8 दिन से खाना नहीं खाया, निकाल 20 रुपये, 20 डाला, या कभी आप ऐसे किसी को, अगर आप सचमुच मांगेंगे, आप भूखे हैं, आप $20 मांगना है, या जो भी मांगता है, क्या कभी ऐसा मांगता हुआ आपने देखा है कि निकाल $20, भूख लग रहा है, भीख दे दो? अगर ऐसा मांगेगा तो आप दोगे क्या? मांगने का पहला शर्त है कि आपको झुकना पड़ेगा। आपको अपने अंदर जो ईगो है, जो एरोगेंसी है, उसको चकनाचूर करना पड़ेगा। अब प्रार्थना के साथ जो प्र शब्द है, अच्छी तरह मांगना, मतलब गिड़गिड़ा के, मतलब अपने आप को पूरी तरह मिटा के मांगो, तभी मिलता है। तब भी कहता हूं ईश्वर नहीं देने वाला है, गिड़गिड़ा हो, पर आपकी प्रार्थना का फल आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा उसकी चर्चा हम करेंगे अगला, अगर आप नेक्स्ट टाइम आएंगे, अगले संडे को आएंगे तो बताऊंगा, क्योंकि समय हो रहा है। पर प्रार्थना शब्द के साथ जो शब्द जुड़ा है कि गिड़गिड़ा कर मांगने का मतलब यही है कि जब तक आप पूरी तरह सरेंडर ना कर दो, अपने आप को हेल्पलेस ना मान लो, तब तक प्रार्थना सफल नहीं होती है। अब कहेंगे मैं कैसे हेल्पलेस मान लूं, मैं तो पूरी तरह अपने आप को भी हेल्प कर सकता हूं, मैं क्यों हेल्पलेस? हम संसार में उस गाय की तरह हैं जिसके गले में रस्सी बंधी हुई है, 200-300 मीटर की रस्सी, जैसे भारत में बहुत सारे गांव में जो गरीब लोग हैं जिनके पास एक या दो गाय होते हैं, वो फिर चरने उसको खुला नहीं छोड़ते हैं, उनके पास जमीन जायदाद नहीं होता, वो किसी सरकारी जमीन पर उसको खोल छोड़ देते हैं और उसके गले में एक 200-300-400 लंबी रस्सी बांध के उसको किसी पेड़ में या खूंटी में बांध देते, जिससे कि गाय को वो पूरे सरकारी जमीन पर घूमने को मौका मिले, घास खाने को, पर वो भाग ना पाए, रस्सी गले में होती है। अब गाय जब घूमती है, दौड़ती है, घास खाती है, तो उसको एहसास होता है कि मैं आजाद हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं कुछ भी कहीं भी जा सकती हूँ। और जैसे ही वो दौड़ने लगती है और वो जो लिमिटेशन है जहाँ वो रस्सी का लंबाई खत्म होती है, उसके गले में फिर दर्द होने लगता, फिर उसको समझ में आ जाता है कि भाई यही तक है मेरा फ्रीडम, फिर वो वापस आ जाता। इंसान जितना बड़ा, कितना बड़ा साइंटिस्ट है, कितना बड़ा इंटेलेक्ट है, जीनियस है, जो कुछ भी है, हम मंगल ग्रह में पानी खोजें, चांद में घर बसाएं, कुछ भी करें, हम तूफान के सामने बेबस हैं। अमेरिका भी उतना ही बेबस है जितना इथियोपिया सोमालिया बेबस है, जितना भारत श्रीलंका बेबस है किसी हवा के तूफान से। हम समुन्दर के पानी के लहरों से विवश हैं, हम सूरज की रोशनी के ओजन से इतने ही विवश हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जब बीमारियां आती हैं, हम सारा चीज ख्याल रखते तो भी बीमारी आ जाती है, हम विवश हैं। डॉक्टर कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इलाज कर सकता हूँ, पर कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप ठीक हो सकते। जब आप खुद को परखते हैं, आप देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए अपने एरोगेंसी को कम करने की जरूरत है, अपने ईगो पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। प्रार्थना का पहला फल है कि व्यक्ति का ईगो एरोगेंसी घटता है, उसमें ह्यूमिलिटी आती है, उसमें विनम्रता आती है। पर प्रार्थना के बारे में मैं तो आपके इंतजार में खींचा हम अगले बार चर्चा करेंगे कि जब हम ईश्वर से मांगने जाते हैं किस तरह की चीजें मांगते हैं और क्यों नहीं मिलता हमें। जब हम रोज 50 साल से, 30 साल से, 20 साल से ईश्वर से प्रार्थना करते, भक्ति करते हैं, उसके बावजूद भी जब हमें जरूरत पड़ती है तो बहुत सारे लोगों का ईश्वर सुनता नहीं है, फिर हम सोचते हैं या तो ईश्वर नहीं है या हमारे गुरु या बाबा कहते हैं तुम्हारी भक्ति पक्की नहीं है। ये दोनों गलत है, आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं है, ईश्वर के होने पर कोई सवाल नहीं है, तो फिर क्यों नहीं हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, इसकी चर्चा हम अगले रविवार को करेंगे। आप जरूर आइए सुनने के लिए अगर सुनिए। धन्यवाद।